कहते हैं कि किस्मत, नियति या प्रारब्ध, ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी जीव को वहां खींच ले जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। एक कहानी है। एक बार कैलाश पर्वत पर पक्षीराज गरुड़ की निगाह एक छोटी चिड़िया पर पड़ी। गरुड़ बड़े मन से उस चिड़िया की अटखेलियों को देख रहे थे। तभी मृत्यु के देवता यमराज भी वहां पहुंच गए। यमराज ने उस चिड़िया की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। गरुड़ समझ गए कि इस छोटी चिड़िया का आखिरी समय आ गया है। यमराज यहां से जाते समय इस चिड़िया के प्राण भी अपने साथ ले जाएंगे। न जाने क्यों गरुड़ को उस छोटी चिड़िया पर बहुत दया आई और उन्होंने सोचा कि वो इस चिड़िया को मरने नहीं देंगे। इसलिए पक्षियों के राजा ताकतवर गरुड़ ने चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और उस जगह से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान पर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए। जब मृत्यु के देवता यमराज से उनकी फिर से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आपने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देखा था। यमराज ने कहा कि जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ध्यान आया कि कुछ ही पल बाद इस चिड़िया की मौत यहां से हजारों कोस दूर एक नाग की वजह से होने वाली है। मैं सोच रहा था कि वो यहां से इतनी दूर इतना जल्दी कैसे जाएगी। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 23। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। 14 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे। अनंत और उसके सभी साथी अपने ठिकाने पर एक तरह का अज्ञातवास काट रहे थे। सुशांत हेडफोन पर तेज आवाज में गाने सुनते हुए झूम रहा था। राज लैपटॉप पर एक्सेल शीट में कोई डाटा फीड कर रहा था। ज्ञान ने हमेशा की तरह किचन संभाल रखा था और अनंत वो पेपर पेन के साथ सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग कर रहा था। तभी ज्ञान की आवाज आई, अनंत सर एक गाड़ी शायद इधर आ रही है। ये सुनते ही अनंत चौंक गया। असल में जिस जगह अभी वो ठहरे हुए थे वो जगह शहर से कुछ दूर खुले इलाके में एक पुराना मकान या कहीं हवेली थी। रेगिस्तानी इलाकों में और खास तौर पर गर्मी के मौसम में ऐसी जगहों पर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, मगर फरवरी के ठंडे मौसम में अनंत को दुनिया से दूर इससे अच्छी कोई जगह नहीं मिल सकती थी। वैसे भी इस तरफ किसी के आने की संभावना ना के बराबर थी। अनंत ने खिड़की खोलकर उधर देखा तो उसे दूर से रेत उड़ाती एक काली फॉर्च्यूनर गाड़ी आती दिखाई दी। अब तक सुशांत भी वहां आ चुका था। सुशांत ने पूछा, कौन हो सकता है ये, यहां का ओनर है क्या? अनंत ने जवाब दिया, नहीं वो इस वक्त यहां क्या लेने आएगा। सुशांत ने पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? अनंत ने अंदाजा लगाया, लगता तो नहीं है। अनंत ने जिस अंदाज में अपनी बात कही उसमें उलझन साफ नजर आ रही थी, इसलिए सुशांत ने झट से अपनी गन संभाल ली और वहीं दीवार की ओट ले ली। अनंत ने राज को अंदर रहने का इशारा कर दिया, जबकि ज्ञान भी किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हो चुका था। अनंत खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। ये अनूप सिंह है, अनंत ने आश्चर्य के साथ कहा, मगर वो यहां क्या कर रहा है? सुशांत ने धीरे से कहा, और इसे यहां का एड्रेस कैसे पता लगा? अनूप सिंह गाड़ी से बाहर आ चुका था। काले रंग का जोधपुरी सूट, माथे पर साफा और आंखों पर काला चश्मा, वो इस वक्त एकदम राजा लग रहा था। उसने चश्मा उतारकर उस हवेली का मुआयना करना शुरू किया। गाड़ी में वो अकेला ही था इसलिए अनंत बाहर आ गया। अनंत के बाहर आते ही उसने हंसते हुए विनम्रता से कहा, माफी चाहूंगा अनंत जी, बगैर बुलाया गया हूं। अनंत को कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने आगे कहा, आप भी कहां इस उजाड़ में ठहरे हुए हैं? मेरी होटल्स की चेन है, आप एक बार कहते तो सही। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको इनवाइट ही नहीं किया, गलती मेरी ही है। फिर अनूप सिंह खुद ही हंसने लगा, देखिए मुझे पता है आप अभी शायद किसी पर भी ट्रस्ट करने के मूड में नहीं है। काश हमारी मुलाकात किसी और हालात में होती तो हम काफी अच्छे दोस्त होते। वैसे दोस्त तो हम आज भी हैं, क्यों अनंत जी? अनंत ने जवाब दिया, हाँ आपका जैसा दोस्त होना मेरे लिए फक्र की बात है, आप अंदर आइए ना। फिलहाल के लिए तो अनंत को अनूप सिंह की बातों से या उसके व्यवहार से किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यह बात उसके दिमाग में खटक रही थी कि वो आखिर यहां तक कैसे पहुंच गया। और यह बात अनूप सिंह ने ताड़ ली थी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आखिर यहां तक कैसे पहुंच गया। तब तक ज्ञान और सुशांत भी वहां बाहर हाथ में चाय के कप लिए आ गए थे। सुशांत ने अनूप सिंह को चाय थमाते हुए मुंहफट अंदाज में पूछ ही लिया, हाँ आप यहां तक कैसे पहुंचे। अनूप सिंह फिर से हंसने लगा, देखिए इंसान चाहे तो कहां नहीं पहुंच सकता है, बस दिल में इच्छा हुई तो आपको ढूंढना शुरू किया, वैसे आपके फोन स्विच्ड ऑफ थे। सुशांत ने सवाल दागा, तभी तो पूछ रहा हूं कि आप यहां तक कैसे पहुंचे। अनूप सिंह ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, वाह क्या चाय है, मौसम बना दिया आपने तो। सुशांत ने फिर से पूछा, मैं पूछ रहा था कि आप यहां तक। अनूप सिंह ने कहा, हां मैं यहां तक कैसे पहुंचा, वैसे तो देखिए यह हमारा इलाका है, हम यहां की खबर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, और फिर आप जैसी पर्सनैलिटी को ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने आपके बारे में पता किया, आप पहले किन किन जगहों पर रुक चुके हैं, यह बात पता करना कोई मुश्किल नहीं है, बस मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं तो आपका दोस्त हूं, अगर मेरी जगह आपके दुश्मन वो बास्टर्ड बल्ली यहां तक पहुंच जाते तो पता नहीं क्या होता। अनूप सिंह ने एकदम सही बात कही थी। इस बात पर सुशांत ने अनंत की तरफ देखा तो अनंत बस खिसियाकर रह गया। अनूप सिंह ने भी ये बात भांप ली थी। उसने आगे कहा, देखिए आप कहां ठहर रहे हैं यह आपका आउटलुक है, मैं बस ये कहूंगा कि आपको मेरी किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। अनंत के कुछ जवाब देने से पहले अनूप सिंह ने कहा, वैसे मैं अभी आपके पास दो वजहों से आया हूं। अनंत ने पूछा, वो कौन सी। पहली ये कि आपने कल काफी बातें कही, उनमें काफी हद तक सच्चाई भी थी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप कहना क्या चाह रहे थे। हम लोग कई बार मिल चुके हैं, जो हो रहा है वो पहले भी घट चुका है। सच बताऊं ये बात मेरे ऊपर से निकल गई। और आप कौन से हथियारों की बात कर रहे थे, मैं भला हथियार क्यों उठाऊंगा। देखिए हथियार उठाना, लड़ना, मारना और उससे भी बढ़कर मरना, ये सब मेरे खून में है। बट नाउ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, मैं क्यों उन डकैतों से लड़ूंगा। उनसे लड़ने के लिए सिस्टम है ना। आई कुडंट अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। आप मुझे समझाएंगे कि असल में चल क्या रहा है। अनूप सिंह की बात सुनकर अनंत का दिमाग एक सेकंड के लिए ठनका। उसे लगा कि वाकई में क्या यह सच बोल रहा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आ गया कि अनूप सिंह असल में बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने भी गोलमाल जवाब दिया। देखिए उन सब बातों को छोड़िए, वो तो बस ऐसे ही थी, वैसे भी हमारी कही हर बात का हर बार कोई मतलब निकले जरूरी तो नहीं है। अनूप सिंह समझ गया कि अनंत बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। एक दो सेकंड के पॉज के बाद उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि अभी हमारे बीच में इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है कि हम खुलकर बात कर सकें। खैर छोड़िए, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अनूप सिंह ने अपनी बात पूरी की और चाय का कप रखने के लिए जगह देखने लगा। सुशांत ने उसके हाथ से कप ले लिया। अनूप सिंह ने आगे कहा, मेरे आने की दूसरी वजह भी है और माफी चाहूंगा, शायद वो वजह है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनंत ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो कौन सी। अनूप सिंह मुस्कुरा उठा। उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया और फोन पर कहा, जी अनंत जी से बात कीजिए। अनूप सिंह ने फोन अनंत की तरफ बढ़ा दिया। उलझन में पड़े अनंत ने फोन रिसीव किया। हेलो हेलो अनंत, वेयर आर यू। अनंत नलिनी की आवाज सुनकर चौंक उठा। हेलो नलिनी, तुम। नलिनी ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, अनंत तुम लोग कहां पर हो, ना तुम्हारी कोई खबर है ना तुम्हारे फोन लग रहे हैं, तुम हो कहां। नलिनी सुनो ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें मिलकर बताता हूं। लेकिन नलिनी जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अनंत वेयर आर यू नाउ और चल क्या रहा है, मुझे अभी जानना है। अनंत नलिनी की बात सुनकर चुप सा हो गया, वो जवाब सोच रहा था। उसकी हालत देखकर अनूप सिंह ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, नलिनी जी। अनंत जी, सुशांत जी और बाकी सभी लोग एकदम परफेक्ट हैं, फिट एंड फाइन। मैं अभी इन्हें आपके पास लेकर ही आ रहा हूं, आप वेट कीजिए, आधे घंटे में हम लोग आपके पास होंगे जी। अनूप सिंह ने फोन काट दिया। अनंत और सुशांत दोनों उसका चेहरा देख रहे थे। अनूप सिंह ने कहा, देखिए यहां क्या चल रहा है, मैंने पहले भी कहा वो आपका आउटलुक है, लेकिन लोगों को आपकी फिक्र है। नलिनी जी वो भी आपको लेकर काफी फिक्रमंद थी, शायद आपको 2-3 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था, मगर जब आप वहां नहीं पहुंचे तो उन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, और जब फिर भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो खुद दिल्ली से यहां आ गई। आपके गेस्ट हाउस से आपका कोई पता नहीं लगा तो आखिरकार उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। किस्मत से वहां के पुलिस ऑफिसर मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, हम लोग रोज ही मिला करते हैं, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और फिर नलिनी जी के कहने पर मैं आपसे मिलने चला आया। अनूप सिंह चुप हो गया, फिर उसने दोनों के चेहरों का मुआयना करते हुए कहा, आई थिंक आपको मेरी बात पर यकीन हो जाना चाहिए। अनंत ने सकपका कर कहा, हां। अनूप सिंह ने पूछा, तो चलें? अनंत अनूप सिंह के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चल दिया। फिलहाल अनंत को सही में अनूप सिंह की बातों में कोई चालबाजी नजर नहीं आ रही थी, मगर इसके बाद भी वो सावधान था। करीब घंटे भर बाद अनंत नलिनी के सामने बैठा था और नलिनी वो उस पर बरस रही थी। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद को भी पता है? तुम कह रहे हो कि तुम्हें शूट के लिए और टाइम चाहिए था, पर क्यों? आज तक तो सारे शूट तुमने टाइम पर पूरे किए हैं, फिर इस बार क्या हो गया? और अगर शूट के लिए तुम्हें रुकना भी था तो तुमने चैनल को या किसी को भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस एकदम से गायब हो गए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नलिनी ने अनंत पर झल्लाते हुए कहा। अनंत ने सोचा था कि वो नलिनी को इस सारे झमेले से बाहर रखेगा, इसलिए उसने उसके सामने एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश की कि असल में शूट पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिन और रुकना पड़ गया, मगर उसके पास नलिनी की इस बात का जवाब नहीं था कि उन लोगों ने अपने मोबाइल फोन और कॉन्टेक्ट के दूसरे जरिए बंद क्यों कर लिए थे। अनंत ने एक कोशिश और की, नलिनी प्लीज अभी के लिए मेरी बात पर यकीन करो, मुझे बस एक दिन और दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन नलिनी समझने के मूड में नहीं थी, इस वक्त वो अपने उस रूप में थी जिसके लिए सुशांत बार बार अनंत को चेताया करता था। अनंत ने बात घुमा दी, तो तुम दिल्ली से ड्राइव करके यहां आ गई? हां तो मतलब, अनंत हंसने लगा। इस बात पर नलिनी को गुस्सा आ गया, व्हाट रबिश, मैं दिल्ली से ड्राइव करके आई हूं और तुम्हें मेरी बात का जवाब देने की जगह हंसी आ रही है। अनंत चुप हो गया, उसे समझ में आ गया कि नलिनी इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती है। थोड़ी देर माहौल में चुप्पी छाई रही, फिर अनंत ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, और मुझे पता है कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। नलिनी फिर से फट पड़ी, समझने वाली बात हो तो समझी जा सकती है, तुम छिपा क्या रहे हो, और तुम्हारे बाकी टीम मेंबर्स कहां हैं? अनंत ने धीरे से कहा, सब यही है। नलिनी ने कहा, मुझे इसी वक्त उनसे मिलना है। अनंत ने उसे चुप कराने की कोशिश की, नलिनी कूल डाउन। नलिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अनंत ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ कहूं? नलिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर अनंत ने बोलना शुरू किया, तुम बचपन से ही अनंत को पाना चाहती थी। नलिनी ने एक झटके में कहा, व्हाट? अनंत ने तसल्ली से अपनी बात दोहराई, तुम बचपन से ही अनंत को पाना चाहती थी। यह बात सुनकर नलिनी के चेहरे के भाव बदलने लगे, उसने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कह रहे हो तुम? अनंत ने अब और ज्यादा भरोसे के साथ कहा, तुम बचपन से ही अनंत को पाना चाहती थी, तुमने अपने बचपन में एक कविता लिखी थी, मैं अनंत को पाना चाहती हूं। नलिनी अब आश्चर्य से भर उठी, यह तुम्हें किसने बताया? अनंत ने कहा, अगर मैं ये कहूं कि तुमने ही मुझे बताया था। मैंने? मगर कब? ये बात तो, नलिनी बताते बताते रुक गई। अनंत ने बीच में कहा, हां ये बात तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को पता नहीं थी, है ना? नलिनी अब परेशान हो गई थी, हां मगर, अनंत ने कहा, हां मगर मुझे ये बात पता है। सोचो जरा कि किसी और वक्त में तुमने मुझे कहा हो कि अगर मैं तुम्हें किसी बात का यकीन दिलाना चाहूं मगर तुम यकीन ना करना चाहो, तो मैं तुम्हें इस तरह यकीन दिलाऊंगा। नलिनी हैरत में थी। अनंत ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो अनंत की इस हरकत पर कांप उठी। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर वो हाथ पीछे नहीं खींच सकी। अनंत ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों पर रख दिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नलिनी, नलिनी, तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो? नलिनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अनंत ने आगे कहा, बस एक दिन की बात है, मेरा भरोसा करो। बस ये समझ लो कि एक बहुत बड़ी पहेली है और उस पहेली का हल बस दो दिन दूर है, फिर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। नलिनी को भी न जाने क्या हो गया था, उसका पूरा गुस्सा न जाने कहां गुम हो गया। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनंत ने कहा, मत समझाने दो, बस मुझ पर भरोसा करो। नलिनी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे एक रीजन दे दो जिससे मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। अनंत ने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्योंकि इस हालात में तुमने पहले भी मुझ पर भरोसा किया था। बात नलिनी की समझ से बाहर थी। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कौन से हालात की बात कर रहे हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं, पर तुम्हारी ये बातें मुझे डरा रही हैं। यू नो दैट कुंवर अनूप सिंह ऑल्सो टोल्ड मी, तुम बड़ी वियर्ड सी अजीब सी बातें कर रहे हो। अनंत ने सिर पकड़ लिया, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो अपना पर्सनल एजेंडा सेट कर रहा है। आर यू बिलीविंग मी और नॉट? नलिनी ने धीरे से जवाब दिया, यस आई बिलीव यू, और शायद यही वजह थी कि मैं दिल्ली से यहां तक आ गई हूं, और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। अनंत ने एक गहरी सांस छोड़ी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनंत ने बोलना शुरू किया। उसने सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताई, बल्लियों के बारे में, बबूति के बारे में, अनूप सिंह के बारे में, सुशांत के बारे में और नलिनी के बारे में भी। उसने यह भी बताया कि वो इस बार किस तरह से शतरंज की बाजी को अपनी तरह से खेलना चाहता है। थोड़ी देर में अनंत अपनी बात पूरी कर चुका था और नलिनी, पूरी कहानी सुनते सुनते उसका चेहरा डर के साथ पीला पड़ चुका था। अनंत, लीव इट नाउ, अभी ये सब छोड़कर यहां से निकल चलो। नलिनी, मैं इससे भागने की कोशिश करके देख चुका हूं, मगर मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता हूं। ये सब एक गेम के जैसे है, इस गेम के पूरा होने पर ही मैं और हम सब इससे बाहर निकल सकेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, इस बार ये गेम मैं अपने तरीके से खेल रहा हूं, इस बार सब ठीक होगा। नलिनी ने जवाब दिया, लेकिन तुम उस डकैत बबूति बल्ली पर कैसे यकीन कर सकते हो? अनंत ने जवाब दिया, यकीन तो मैं अनूप सिंह पर भी नहीं कर सकता हूं, मगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और ये लोग, इनके पास भी मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो बिलीव मी, इस बार सब कुछ ठीक होगा। अनंत ने फिर से नलिनी के हाथ पर हाथ रख दिया। नलिनी ने भी अपना दूसरा हाथ उस पर रख दिया। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच की सारी बातें खत्म हो चुकी हों। उस वक्त बस खामोशी अपनी बात कह रही थी। अनंत नलिनी को भरोसा दिला चुका था। उसने उसे वापस दिल्ली लौट जाने के लिए कहा भी, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। अनंत ने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। वहां से निकलकर वो लोग अपने नए ठिकाने पर आ गए। 14 तारीख का दिन ढल चुका था। इस बार सब कुछ शांति से बीत रहा था, लेकिन यह शांति अनंत को खल रही थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि यह शांति जरूर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। खासतौर से बल्लियों की तरफ से किसी हलचल का ना होना उसे परेशान कर रहा था। अनंत के दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। इसी उधेड़बुन में वो रात को देर तक सोया नहीं था। आखिरकार उसकी आंख लग गई। नींद में भी उसके दिमाग में बबूति, बूढ़ा, अनूप सिंह, सुशांत और देवता ही घूम रहे थे। बार बार पिछली बातें उसके सपनों में घूम रही थी। रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा यह शायद उसका वहम था, इसलिए वो वापस से लेट गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस वक्त कहीं और था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वो जगह नहीं है जहां वो लोग रात को रुके थे। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पथरीली जमीन पर है। उसने पलटकर देखा, जिस दरवाजे से निकलकर वो बाहर आया था वहां वो दरवाजा नहीं था। उसे यकीन हो गया कि वो सपना ही देख रहा है। उसने अपनी बांह पर चिकोटी काटकर कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी वहीं था। उसने वापस अपनी बांह पर जोर से नाखून गड़ाए और इतनी जोर से गड़ाए कि खून चमकने लगा, लेकिन अभी भी वो उसी पथरीली जमीन पर था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे कुछ चट्टानें नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह कुछ जानी पहचानी है। अनंत आश्चर्य से भर उठा, ये मैं कहां गया? ये तो कालचंकु पहाड़ है। आप सुन रहे थे कालचंकु दूसरा अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 23, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस। दोस्तों, मैं दीपक मेड़तवाल, कालचंकु कहानी का राइटर नैरेटर। अगले दो एपिसोड में कालचंकु दूसरा अध्याय यानी सेकंड चैप्टर पूरा होने वाला है। मेरे पास कहानी को लेकर आपके काफी सारे सजेशंस आए हैं। हो सकता है कि मैंने कहानी का जो एंड सोचा है वो आपकी पसंद से कुछ या बहुत ज्यादा अलग हो, लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये कहानी केवल टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी का बेसिक थॉट यानी मूल विचार फाइट विद डेस्टिनी यानी प्रारब्ध के साथ लड़ाई है। इसलिए प्लीज कहानी और कहानी लिखने वाले में भरोसा रखिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कहानी का फ्लो और थीम एंड तक मेंटेन रहे। एक बात और, अगले दो एपिसोड्स में कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसलिए कहानी को हेडफोन लगाकर सुकून से सुनिएगा। और अगर हो सके तो प्लीज मेरी और वो कहानियां शो की थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। इफ पॉसिबल सोशल मीडिया पर शो का रिव्यू लिख दीजिएगा। शुक्रिया। सुनते रहिए वो कहानियां।